نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ولا تسرن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. زمانے کی قسم کہ انسان نقصان میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے ایمان لا کر عمل صالح کیا پھر ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کرتے رہے اور اس پر پھر صبر کرتے رہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے مسلمان بنایا. اسلام ہمارا تعارف ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہماری پہچان ہوں گے. اگر میں اور آپ خود کو مسلمان کہتے ہیں تو اس کے پیچھے جو بات ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. اگر اللہ کا نبی دنیا میں نہ بھیجا جاتا اور آپ کا دنیا میں آنا اور آپ کا نبی بنا دیا جانا اور آپ کی زبان اثر سے اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام نہ دیا جاتا تو آج میری اور آپ کی کوئی پہچان نہ ہوتی. ہم میں سے ہر ایک وہی کر رہا ہوتا جو کہ ہمارے باپ دادا کرتے تھے اور ہمارا آپس میں کوئی کسی قسم کا کوئی رابطہ نہ ہوتا. دین وہ ہے جو اللہ کے نبی لائے. گو کہ نبوت کا تار تو پیچھے سے جڑا ہوا تھا, سبھی جانتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء کرام گزرے وہ آپ سے کسی مختلف دین پر نہیں تھے. اس لیے یہ ساری باتیں کر رہی ہوں کہ آج ہم واقعہ کربلا تک پہنچنے کی کوشش کریں گے. جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں ہمیشہ سب سے پہلے کربلا کا واقعہ آتا ہے اور ایسے لگتا ہے کہ کربلا کے لفظ سے محرم شروع ہوا اور اسی پہ ختم ہوگا. اور کربلا کا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 50 سال بعد, جو آپ میں سے میرے میں سے اکثر کی عمر بھی نہیں ہوگی, اس کے بعد واقع ہوا. دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پورا ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دین پورا ہوا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے جانے کے تقریباً 50 سال بعد ہونے والے ایک واقعے کو کسی بھی مہینے کی پہچان بنایا جائے, یا کسی مہینے میں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے؟ کیا یہ اللہ کے نبی کے نصف صدی کے بعد کے لوگوں سے یہ بات شروع ہوگی؟ اور اگر ایسا مان بھی لیا جائے ایک منٹ کے لیے, تو پھر جو 50 سال کے دور میں لوگ چلے گئے آپ سے لے کر واقعہ کربلا کے پیش آنے تک, جو لوگ دنیا سے چلے گئے وہ ادھورے دین پہ گئے. بات واضح ہے؟ تو یاد رکھیے گا, الیوم اکملت لکم دینکم کا وعدہ جو اللہ نے سورت مائدہ کے بالکل آغاز میں کیا اپنے نبی سے, وہ پورا ہوا. اللہ نے آدم علیہ السلام کے ذریعے انسانیت کو شروع کیا, ابو البشر بنایا. آپ کہہ لیجئے کہ مادی طور پہ یا آج کے دور میں اب سائنسی طور پہ یا میڈیکل کی اصطلاح میں بھی کہہ دیجئے کہ آدم ہم سب کے باپ تھے. اس وقت انسانیت اپنی اصل پہ تھی. جیسے پیدا ہوتا بچہ جھوٹ نہیں بولتا, وہ اپنے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کہتا نا, تو انسانیت کا بچپن تھا وہ, کوئی گناہ نہیں تھا. ہر بچہ اسی فطرت پہ تھا جس پہ اللہ نے اس کی روحوں سے وعدہ لے کر اس کو دنیا میں بھیجا. آہستہ آہستہ دنیا میں شر پھیلتا گیا اور وہی آدم اور ابلیس کا قصہ جو آسمانوں پہ پیش آیا گیا اور اسی کے نتیجے میں اس دنیا کو ایک نئے رنگ میں پیش کیا گیا, وہ پیش آیا. اور آدم علیہ السلام سے لے کر تقریباً 10 صدیاں 10 سینچریز تک آہستہ آہستہ شیطان کو اپنے پر پرزے دکھانے کا موقع ملتا گیا. سب سے پہلی برائی جس میں شیطان نے انسانیت کو ڈالا وہ شرک تھی. شرک اتنا ہی پرانا ہے جتنا انسان پرانا ہے. क्योंकि शैतान को तो ये बात बड़ी अच्छी तरह पता थी कि शिर्क की मौजूदगी में बड़ी बड़ी इबादतें, तहज्जुदें, तरावियां, नमाज, रोज़े ज़ाया हो जाएंगे। वो आपको छोटे छोटे कामों में नहीं डालेगा, वो एक ऐसी जगह डालेगा जिसकी मिसाल आपको दे देती हूँ दुनियादारी के नाते से, कि आप घर के अंदर आकर कितने को बटन चलाकर बंद करेंगे, फिर भी कोई खुला रह सकता है ना, कोई बल्ब, कोई ट्यूब, कोई रोशनी करने वाली चीज़। तो इसका आसान तरीका है कि मेन कंट्रोल बंद कर दीजिए, क्या कहते हैं पाकिस्तान में उसको, मेन स्विच बंद कर दीजिए। शिर्क वो मेन स्विच है कि जिसको अगर खोल दिया जाए तो सारे दरवाजे खुल जाते हैं शिर्क और बिदत के और गुनाह के। खैर, वो तारीख की उस तरफ आज नहीं जाएंगे, लेकिन 10 सदियां गुजर गईं तो फिर अल्लाह ने अपना पहला साहिबे शरीयत नबी नूह अलैहिस्सलाम भेजा। सूरत नूह में आप पढ़ लीजिए, सूरत हूद में पढ़ लीजिए, किस्सा मिल जाएगा कि जब शख्सियत परस्ती का शिकार होकर इंसानियत को इंसानों में खोकर जीने का सबक दिया गया कि जो जो मरता जा रहा है उसके नाम का एक एक बोत शबी या उसका ऐसा एक डमी बना ली जाए कि इसकी बरकत से तुम अल्लाह के अजाबों से बचते रहो, तो फिर अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा था। पंचतन पाक थे उस वक़्त, जिनकी लोग पूजा करते थे, लात, मनात, उज्जा, यौक, यगूस और नसर। ये सारे नाम आप सूरह नूह में से ले सकते हैं, कोई नए नाम नहीं है, कुरान में एक्सेंट के साथ आप पढ़ते हैं। खैर, नूह अलैहिस्सलाम ने शिर्क के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की, वहाँ से लेते हुए नबुव्वत का सिलसिला चला। आप इमेजिनेशन में एक ट्रेन बनाइए, इंजन लिख लीजिए आदम अलैहिस्सलाम के दौर का वक्त है, इंसानियत का काफ़िला चल पड़ा, रवां दवां हो गया। पहली बोगी उसमें जो नबुव्वत के नाम की लगी वो आद नूह अलैहिस्सलाम थे। अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को भेजा और मौजज़ाना तौर पे 950 साल इसकी ज़िंदगी दी और उनसे दीन का काम लिया। उन्होंने लोगों को इसी बात की दावत दी कि या यूहन्ना सोबुदु रब्बकुम, एक ही जुमला था कि इबादत करो अपने रब की, अल्लज़ी फिर खलक़कुम, और तुम्हें और तुम्हारे पहलों को पैदा किया। होते होते इसी काफ़िले में, इसी ट्रेन में बोगियाँ लगती गईं। नूह अलैहिस्सलाम है, शीस अलैहिस्सलाम है, इदरीस अलैहिस्सलाम है, होते होते फिर मशहूर अम्बिया कराम में से इसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दौर आता है। आज दुनिया में मौजूदा अदियान, रिलीजन्स, इनकी सब की कड़ी पीछे से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जुड़ती है। अल्लाह ने उनको दो बेटे दिए और दोनों से ही नबुव्वत का सिलसिला जारी रहा। अल्लाह ने इसहाक दिए तो उनसे तो पूरी बनी इसराइल और उसके बाद आज के मौजूदा क्रिश्चियंस भी उसी से हैं। लेकिन एक बेटा जिसको अल्लाह का हुक्म समझते हुए एक बंजर वीरान जगह पे छोड़ा है, जिसकी अभी हमने चंद दिनों पहले याद मनाई है ईद उल अधा के मौके पे, तो उनको मक्का के करीब जब छोड़ा तो वहाँ से फिर एक चिराग जला कि जिसको कुरान ने सिराज मुनीरा कहा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस ट्रेन की आखिरी बोगी सवार मोहम्मद रसूलुल्लाह थे। इसके बाद इस ट्रेन को बंद कर दिया गया। लिख लीजिए सूरत अल अहज़ाब की मारूफ आयतें हैं खातमुन नबीजीन, और यहाँ खातिम का मानी स्टैम्प और सील दोनों में से, सील के मानों में है, स्टैम्प के मानों में नहीं है। स्टैम्प कह के आप मोहर लें, जहाँ जाकर जिसका दिल करा मोहर लगाई मैं नबी हूँ, और सील क्या होती है, जो ख़त को सील कर देते हैं कि अब इसमें कोई और नहीं आएगा। उम्मते मुस्लिमा का खुद को मुसलमान कहने और कहलाने वालों का मुत्तफ़िका फैसला है ये। अहले सुन्ना वल जमात, वो गिरोह जो शुरू से अपने इस नाम के साथ मारूफ था, शुरू से उनका इस चीज़ पर इत्तफाक और इजमा है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत की हिदायत के लिए भेजे गए काफ़िले का आखिरी डब्बा थे। आपके बाद ना कोई नबी आएगा और ना नबी की कोई मसील आएगी। आपके बाद खुलफाए राशिदीन आए, चार थे, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, चार थे, अल्लाह उन सब से राज़ी हुआ। उसके बाद अगर मुकाम देखें तो अशरा मुबशरा का है, जो 10 थे, और 10 के 10 जो थे वो अव्वलीन मुसलमान थे। इस्लाम के इब्तदाई दौर में कह लीजिए कि इस्लाम की तारीख़ उनके जिस्मों पे ज़ख्मों और तकलीफ़ों की सूरत में लिखी गई। इफ्स एंड बट्स में नहीं पड़े, बल्कि फौरन ही जो बात कही गई उसको मानने को तैयार हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो पूरे का पूरा दीन आप के मेरे तक पहुंचाया जो अल्लाह ने उनको हुक्म दिया। अगर आज कोई ये कहता है कि नबी सल्लम ने दीन का कुछ हिस्सा छुपा लिया और अब बाद में कोई इमाम या कोई नबी आएगा तो वो उसको देगा, तो उसके तो इस्लाम पे शक भी नहीं है। जिसने उसके इस्लाम मुसलमान जो इस्लाम पे शक किया वो ख़ुद भी मशकूक है, इतनी सी बात है। यानी असलाफ कहते हैं कि अगर किसी ने झूठी नबूवत का दावा किया और किसी ने उसको जाकर कहा कि इसकी दलील पेश करो, वो भी काफिर है। देखिए ना, दलील किस चीज़ की मांगी जाती है? जिसके सही या गलत होने की उम्मीद हो। तो किसी ने कहा कि मैं नबी हूँ, मसलन मुसैलमा कज़्ज़ाब नाम के एक शख्स ने नबी सल्लम की ज़िंदगी में ही झूठी नबूवत का दावा कर दिया। जब उसने दावा किया और अगर कोई जाकर कहता है कि मुसैलमा मुझे इस बात की दलील पेश करो कि तुम अल्लाह के नबी या अल्लाह के रसूल हो, तो सहाबा कराम के हाथ उसकी गर्दन पे जाने को तैयार थे कि तुम्हें जुरत कैसे हुई कि तुम ये दावा करो कि तुम नबी हो। बाकी बातें तो बात की हैं। अल्लाह के नबी सल्लम ने जो दीन दिया मुकम्मल था। लैलुहा का नहारीहा, उसकी रातें सुबह की तरह रोशन थी। सहाबाए कराम बड़े मान और फ़ख्र से कहते थे कि अगर एक परिंदा भी हमारे सामने से उड़ता हुआ गुज़रता तो अल्लाह के नबी हमें उसके बारे में भी बताते थे। और एक मौके पर एक यहूदी ने ताना दिया किसी मदीना में रहने वाले मुसलमान को कि तुम्हारा नबी तुम्हें बैतुल खला में जाने के तरीके बताता है, यानी रेस्ट रूम यूज़ करने का तरीका भी बताता है कि बाएं पाँव पे बैठो और झुक के बैठो और ऐसे करो। हम होते तो इसी पे शर्मिंदा हो जाते। ओहो, ये क्या फितना। उसने कहा, हाँ, मैं बड़े फ़ख्र से कहता हूँ कि अल्लाह ने हमें वो लीडर दिया है, वो उस्ताद दिया है कि जो हमसे कुछ नहीं छुपाता। इतना मान था सहाबा कराम को। अल्लाह के नबी सल्लम की ज़िंदगी के जब आखिरी दिन शुरू हुए, महीने साल, आपको पता है कि इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फ़त्ह व रायतन्ना सयदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर इन्नहु काना तव्वाबा। जब ये आयतें नाजिल हुई जो एक पूरी सूरत की सूरत में थी, तो सहाबे किराम तो खुश हो गए। गलबे की बात है, गिरोह दर गिरोह इस्लाम में लोगों के दाखिल होने की बात है। लेकिन अबू बकर सिद्दीक रोने लग गए। कहा, अबू बकर आप क्यों रो दिए? कहा, इसलिए कि काम पूरा हो जाए तो काम करने वाला बुला लिया जाता है। तो असल में तो इसमें अल्लाह के नबी की वापसी की खबरें थी। आप भी किसी जगह कोई काम कराने जाएं, करने जाएं, हो जाए तो वापसी का रास्ता देखने लग जाते हैं। हज करके आए हैं ना अभी आप, तो हज के बाद रास्ता नापने लग जाते हैं ना, कब जाना है, क्या होता है। तो क्या पता चला कि जिस दिन अल्लाह के नबी ने इस दुनिया से आंख बंद की, उस दौर से लेकर आज 1470 साल हो गए हैं, 1470 ईयर्स। दीन की कोई बारीक से बारीक और मोटी से मोटी बात ऐसी नहीं थी कि जिसके बारे में नबी सल्लम ने ना बता दिया, बल्कि क़यामत से करीब जो कुछ होने वाला है वो सब भी बता दिया। अल्लाह के नबी सल्लम की पेशन गोइयाँ, जिसको आप प्रिडिक्शंस कह सकते हैं, आप पढ़कर देखिए, एक एक बात रोज़े रोशन की तरह वाज़े है। चाहे वो अरब का सरसब्ज़ो शादाब हो जाना हो, चाहे वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का कायम हो जाना हो, या फिज़िकल चेंजेस जो दुनिया में इस वक्त आ रही हैं, या जंगों का कोई एक मंज़र हो, अल्लाह के नबी सल्लम के दुनिया से जाने के बाद की जो बात है, हमारा अमूमन मुतालिया इसी पर रुक जाता है। सीरा की रोशनी में भी हमारा आखिरी सबक सीरत में वही होता है जिस दिन आपके राहलत फरमाए जाने की बात है। अभी हमने चंद माह पहले बुक पूरी की थी सीरत की, जिसका नाम था मुहसिन इंसानियत। उस बुक में आपके बाद के भी कुछ हालात थे कि आपके बाद क्या फौरी रिएक्शन हुआ उम्मत पे। लेकिन मैं आज थोड़ी सी बात आपके साथ करूँगी, शुहदाए करबला और हमारा तर्ज़ अमल। अल्लाह के नबी सल्लम की ज़िंदगी में जो आयात नाजिल हुई उसमें से एक आयत मैंने भी आपके सामने रखी है, सूरत बकरा की आयत 154 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वला तकूलु लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात। और ना तुम कहो उनको जो कत्ल कर दिए गए या मार दिए गए अल्लाह की राह में, यानी और जो लोग अल्लाह की राह में मार दिए जाएं, तुम उनको मुर्दा न कहो। क्यों? बल अहयाउन, बल्कि वो तो ज़िंदा हैं। ऐसे लोग तो हकीकत में जिंदा हैं, तो किधर हैं फिर, दिखाइए। हम कहते हैं जिंदा है तो हमें दिखने चाहिए। कबला किल्ला तश्रून, तुम शऊर नहीं रखते। क्या पता चला कि अल्लाह के रास्ते की शहादत वो मुकाम बंदगी है कि जो बंदा अपनी जान पे छुरी चलाकर या तलवार के नीचे अपना सर देकर अल्लाह को दिखाता है कि कुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कह दीजिए कि मेरा जीना और मेरा मरना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। और हकीकत ये है कि वकज़ालिक जालनाकुम उम्मतम वसतल्ली तकूनु शुहदा अलन्नास की सूरत में, जो दूसरे पारे की पहली ही आयत के करीब, अल्लाह ने आपको मुझे एक मनसब सिखा दिया कि मैंने तुम्हें इस दुनिया में अपने दीन की सरफराजी के लिए भेजा है। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। ये जो दिन में 5 नमाजें आप पर मैं पढ़ते हैं, और फजर जो उठते हैं नींद छोड़कर, आजकल तो चले मौसम अच्छा है, कुछ महीने में बर्फ़ों में उठकर मस्जिदों में जाकर मर्द ये गवाही देंगे इस बात की कि अल्लाह आज तेरे कहने पे बिस्तर छोड़कर मस्जिद में आकर माथा टेकने लग गया हूँ। कल अगर इस वक्त दुश्मन आए जो तेरे दीन के नाम पे मुझे उठाए या तेरे दीन को नुकसान दे, तो उस दिन भी मैं बिस्तर छोड़ के निकल पड़ूंगा। फजर इस बात की तैयारी थी कि दुश्मन अगर अलल ऐलान सुबह सुबह आ जाए, छुप छुपा के ही क्यों ना आए, तो उस वक़्त उम्मत के मर्द निकलने के आदी हों, उनको उस वक़्त नौजिया ना होने लगे कि हम तो कभी इस वक़्त जागे ही नहीं है। और जोहर इस बात की तैयारी थी कि अगर दुश्मन इस्लाम को नुकसान देने के लिए अगर किसी ऐसे वक्त में आ जाए कि ऐन दुनिया के काम अरूज पे हैं, जोश पे हैं, और उस वक्त कहीं तुम्हें अगर अल्लाह की कोई कॉल आ जाए तो तुम सब छोड़ छाड़ कर चल पड़ो। इसी तरह से असर भी दोबारा आराम और मगरिब दिन के जाने के गम में भागते हुए लोगों को एक ऐलान था कि देखो मगरिब इसलिए मैंने दी है तुम्हें कि अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कोई ऐसा वक्त आ जाए कि इस्लाम को तुम्हारी ज़रूरत हो और तुम्हारा दिन जा रहा है और अभी तुमने काम पूरे नहीं किए, तो फिर याद रखना कि अल्लाह ताला के नाम पे निकल खड़े हो ना, काम तुम्हारे मैं कर दूंगा। और ईशा फिर इसी बात का ऐलान था कि तुम सारा दिन के थके हारे दुनिया के पीछे भागे हो और आप बिस्तर ढूंढ रहे हो, खाना ढूंढ रहे हो, अगर कोई इस्लाम को तुम्हारी ज़रूरत पड़ गई तो तुमने फिर इस्लाम की तरफ आना है। तो शहादत क्या है? शहादत गहे उल्फत में कदम रखना। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। चूमी गोयम मुसलमानम बलर्जम, अलामा इकबाल फ़ारसी में कहते हैं मैं खुद को मुसलमान कहते हुए लरजता हूँ के दानम मुश्किलाते ला इलाहा इल्लल्लाह, क्योंकि मुझे खूब अच्छी तरह से पता है कि जब बंदा कलमा पढ़ लेता है तो उसको मुश्किलात क्या आती हैं। तो ये सारी बातें क्या बताती हैं? इस्लाम की नज़र में शहादत एक एजाज़ है। अगर एक माँ, हकीकी माँ, मैं सौतेली माओं की बात नहीं करती या दुनियादार माओं की बात नहीं करती, और उनकी तो करती नहीं है, जिन बेचारियों को पता ही नहीं कि हमारी गोदों में ये लाल और मोती अल्लाह ने डाले क्यों हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि बुढ़ापे में पानी पिला देंगे। पूछिए ज़रा बूढ़े लोगों को बच्चे पिलाते हैं या बच्चों के रखे हुए नौकर पिलाते हैं पानी? अपने बच्चों के हाथ से तो पानी का प्याला आज नसीब वाला ही को पिएगा, क्योंकि हमने अपने बच्चों को इतना पढ़ा लिखा दिया कि वो तो मसरूफ़ हो गए, वो तो इतनी दूर जाके बस गए कि उन्होंने हज़ारों के नौकर रख दिए, बड़े बड़े घर बना दिए, लेकिन मशीनें भेज दी, मसाजर भेज दिए, लेकिन उनके हाथों का लमस बड़े कम माँ बाप को नसीब है। घर में रहती औलाद नहीं माँ बाप को पूछती, क्योंकि 4 नौकर रखे हुए हैं, वो बाजी वो अम्मा जी को दबाएंगे, वो दबा देंगे, वो खिलाएंगे, वो पिलाएंगे, तो कंपनसेट तो कर दिया हमने। लेकिन याद रखिए कि औलाद को पाने का मकसद ये नहीं है कि वो आपको बुढ़ापे में पानी दे, और सेहरा बांधें आप उसके सर पे, एक और ख्वाब होता है हमारा औलादों के साथ कि जी सेहरे बांध लें, तो सेहरे बांधता कौन है? आज तो औलादे माँ बाप को शादी में बुला ही लें तो बड़ी बात है। तो ये तो एक बड़ा दुखी टॉपिक है, इस पे मत जाइए, लेकिन इस वक्त हम बात करने लगे हैं वाक़े करबला की। आज 50 साल बाद पेश आए हुए एक वाक़े को बुनियाद बनाकर मुहर्रम के महीने आते ही मातम नौहा कुनी, और सबसे बड़ी बात खुद को ईज़ा और तकलीफ़ दी जाती है। मुहर्रम जो हुरमत के महीनों में से, इस पे बीसियों लेक्चर मौजूद हैं, ऐप पे भी हैं, वेबसाइट्स पे भी हैं, कई लोगों के मिलेंगे, मैं अपनी तो बात ही नहीं करती, उर्दू में भी हैं, इंग्लिश में भी हैं, यकीनन कुछ ना कुछ नोश्क में होगा, जाके सुनिए। हर रोज़ का एक लेक्चर सुन लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का पहला साल है। मुहर्रम वो पहला चांद था जो अल्लाह के नबी के मदीना आने के बाद सहाबा की आंखों ने देखा, कहा बस इधर से हिजरी कैलेंडर शुरू करते हैं। ये उमर के दौर में डिसाइड हुआ था, और मुहर्रम से आपकी मेरी ज़िंदगी का एक नया साल, हैप्पी न्यू ईयर कह लीजिए, कुछ और कह लीजिए, वो शुरू होता है। मुहर्रम वो महीना है, अगर आप देखें तो हुरमत के महीनों में इसका नाम आता है। ज़िल हज पीछे गया, आज उसके बाद ये आ गया। ज़िल हज में इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल की कुर्बानियों का तज़किरा था कि बेटे की गर्दन पे छुरी रखी गई, और अगर आप मुहर्रम के महीने को देखें तो हुरमतों के अंदर बांध दिया गया कि देखो सगे बहन भाई नहीं लड़ सकते, शौहर बीवी नहीं लड़ सकते, सियासी जमातें आपस में नहीं लड़ सकती। काबा के अंदर बाप के कातिल को देख लेते थे लोग, तो इस महीने में नहीं लड़ते थे। और मुहर्रम का महीना और बाकी महीनों की तरह डे वन से इन इद्दत शहूर इन दिल्लाह इस्नता अशरा शहरा, सूरह तौबा की आयत खोल लीजिए, डे वन से इसकी हुरमत है। अल्लाह के नबी मदीना में आते हैं, देखते हैं कि यहूद इस दिन रोज़ा रखते हैं, कहा क्यों रखते हो, कहा इस दिन बनी इसराइल को निजात मिली थी और फिरौन डूबा था और मूसा ने रोज़ा रखा था। कहा अच्छा, तो मूसा से तो हमें भी बड़ा प्यार है, हम भी रखेंगे। क्या वो खुशी का मौका था कि गम का? याद रखिए मुहर्रम खुशी का महीना है। मुहर्रम के साथ मैं लंबी तफसीलात ना भी डालूं, बड़े बड़े वाक्यात 10 मुहर्रम के साथ जुड़े हुए हैं। अल्लाह के नबी ने रोज़ा गम के साथ नहीं रखवाया, खुशी से रखाया। जब पता चला कि यहूद ये काम करते, कहा अगले साल हम उनसे अपने आप को ज़रा सा मुनफरिद करने के लिए एक की बजाय दो रोज़ा रखेंगे। तो वो तो शुक्राने का रोज़ा था। फिरौन जो डूबा वो तो गम करें, फिरौन वाले गम करें, हाय फिरौन डूब गया, लेकिन बनी इसराइल को निजात भी तो मिली, क्योंकि जो किसी एक की शिकस्त है वो दूसरे की फतह होती है। दूसरी बात आप देखिए कि अल्लाह के नबी सल्लम की ज़िंदगी में अगर आप पढ़ कर देखें सहाबा की ज़िंदगियाँ, और ख़ास तौर पे आपके मेरे लिए जो रोल मॉडल्स हैं वो सहाबी आते हैं, बेटों को दुआएँ दिया करती थी, सबक दिया करती थी, दूध पिलाते हुए भी और यकीनन नहलाते धुलाते हुए भी, कि बेटा शहादत हक के राही बनना। शहादत दर हकीकत हयात जाविदा है, हमेशा की ज़िंदगी है, ये एक तोहफ़ा इलाही है। शहीद जन्नत में शहादत हासिल होने के वक्त जिस लुत्फ को महसूस करता है, उसको पाने की ख्वाहिश में वो दोबारा दुनिया में आना चाहता है। और याद रखिए कि इस्लाम में शहादतों का सफ़र हज़रत यासिर रज़ी अल्लाहु अन्हो के ख़ानदान से शुरू हुआ, आले यासिर कहते हैं। सबसे पहले शर पसंदों में, जिसमें अबू जहल का नाम आता है, उसने एक औरत को निशाना सितम बनाया और उसका नाम हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाहु अन्हा था। अल्लाह के नबी सल्लम की अजीम सहाबिया सुमैया को शहीद किया गया। फिर उसके बाद आप देखिए कि खलीफा सानी दूसरे शेख खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसल्ले रसूल पे शहीद कर दिए गए नमाज के दौरान। उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ तो खलीफा सालिस हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को 82 ईयर्स की उम्र में 40 रोज़ तक भूख प्यास की हालत में शहीद कर दिया गया। और याद रखिए कि हज़रत उस्मान गनी से वो दरवाज़ा खुला था कि जिसमें आप कह लीजिए कि बिलवाई, बिलवाई उस दौर के एक शर पसंद गिरोह का नाम आप फ़िलहाल समझ लीजिए, हज़रत उस्मान गनी वो शख्स थे कि जो बहसियत खलीफ़ा बिलवाइयों के ख़िलाफ़ इंतहाई कदम उठा सकते थे, लेकिन आपने मदीना रसूल में खून खराबे को बर्दाश्त नहीं किया, ये नहीं पसंद किया, और अमन को पसंद किया, अपनी खिलाफत के दौर में अमन कायम करते रहे। और अगर कोई वाकई शहीद का किस्सा बयान करे और शहादत के ऊपर कोई जुमला बोल सके तो वो शहादत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु है। 40 दिन के भूखे बीवी को पूछते हैं, नाइला नाम था बीवी का, घर में बंद है, मुहासरा है, बाहर दुश्मन है, कि बीवी कुछ खाने को है? कहा अच्छा मैं देखती हूँ। और वो देखने गई और आंख लग गई, वापस आई कहने लगी कुछ भी नहीं है। कहा का कोई बात नहीं, मैंने रोज़े की नियत कर ली है। और जब आंख लगी और उठे तो कहा कि मुझे ख्वाब में नबी सल्लम मिले और कहा कि उस्मान, आज का रोज़ा आप हमारे साथ इफ्तार करेंगे। अभी मियाँ बीवी में ये बातें हो रही हैं कि बिलवाइयों ने घर का दरवाज़ा तोड़ा और इन पर तीरों की बौछार की, और सामने मुस्तफ़ा, जाइए तुर्की जाते हैं अगर आप कभी, तो वहाँ देखिए, फसयकफीकहुमुल्लाह, आखिरी पेज है पहले पारे का, आप में से अक्सर पढ़ के आए हैं, फसयकफीकहुमुल्लाह, पस अन करीब आपको किफ़ायत करेगा अल्लाह इनके मुकाबले में, और उस पे इनके खून के छींटे हैं और हज़रत उस्मान शहीद कर दिए गए। अगर शहादत बुरी चीज़ होती, शहादत के ऊपर गम होता, तो वो इस पे होता। अल्लामा इकबाल की एक पूरी पोएम है कि शहीदों का मातम हम किया नहीं करते और अल्लाह के रास्तों में मरने वालों को यूँ रुसवा हम नहीं करते। तो याद रखिए कि शहादत एक मेराज है। जैसे ज़िंदगी में जीते जीते मोमिन की मेराज नमाज है ना, तो मरने के सूरत में मेराज कहते हैं द बेस्ट, टॉप टॉप मोस्ट, टॉप 10 होते हैं ना, दी टॉप मोस्ट डेथ इज़ शहादत। अगर आप और मैं इसकी ख्वाहिश कर सकें तो कर लें, क्योंकि शहीद को तकलीफ़ नहीं होती, शहीद को अजाब कब्र नहीं होता, शहीद को वो जो कब्र में कीड़ों का खाना पीना नहीं, शहीद कब्र में होता ही नहीं है। इधर जान निकली, खून का कतरा गिरा और वो जन्नत में अपना मुकाम देखता है। और आप देखिए, एक आयत तो मैंने आपको सुना दी ना, एक और भी है बिल्कुल इसी मौजू की आयत, जो कुरान ने शुहदा की शान में बयान की, सूरत आले इमरान आयत नंबर 169, वला तख्सबन्नल्लज़ीना कुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, और मत गुमान करो उन लोगों के बारे में जो अल्लाह की राह में कत्ल हो गए कि वो मुर्दा हैं, बल अहयाउन इंद रब्बिहिम, वो रब की नज़र में ज़िंदा हैं या रब के पास ज़िंदा हैं, युरज़कून, रिस्क पा रहे हैं। शहीद खाता है पीता है, फ़रहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़ली, वो तो खुशियाँ मना रहे हैं उस चीज़ पे जो अल्लाह ने उनको अपने फ़ज़ल से दिया है। बस इतना ही नहीं, वयस्तबशिरून बिल्लज़ीना लम यलहक़ू बिहिम, बल्कि वो तो उन लोगों की भी खुशखबरियां पा रहे हैं जो भी उनको मिले ही नहीं, यानी अपने से बाद शहीद होके या अच्छे ईमान की हालत में मरने के बाद जन्नत में आने वाले रिश्तेदारों की खबरें भी उनको मिल जाती हैं। लम यलहकू बिहिम मिन खल्फिहिम अल्लाह खौफन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और ये कि ना कोई उन पर खौफ है और ना उनको रंज का कोई मौका है। बात ही नहीं पूरी हो रही, यस्तबशिरून बिनेमत मिन अल्लाह, वो अल्लाह के नाम और इसके फजल पर शादा व फरहां हैं, बिनेमत मिन अल्लाह व फतलिन व अन अल्लाह ला युदी अजरल मोमिनीन, और अल्लाह मोमिनों के अजर को ज़ाया नहीं करता। ये चार आयतें जाके घर पढ़िएगा सूरत आल इमरान की। तो शहादत के तो कुरान किससे बयान करता है, किसी का बेटा शहीद हो जाए, माँ को आकर लोग मुबारके देते थे कि तेरा क्या अमल था कि तेरे बेटे की शहादत हुई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफीजाद बहन, आपकी साली हज़रत आयशा की बहन अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा, बेटा है इब्ने, बोलिए किसको पता रिश्ता। देखिए इन रिश्तों को भी तो थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है ना। ज़ुबैर की बीवी जो अल्लाह के नबी के फूफीजाद भाई थे, और इब्ने अब्दुल्ला की माँ, और ये अपने बेटों को जब भेजती थी मैदान जंग में, ऐसे भेजती थी जैसे आज की माँ बेटे को सेहरा बांध के भेजती है कि बेटा इधर गोली खाना, कल तेरी लाश मैदान जंग में, और पता चला कि गोली पीछे है तो मेरा तो सर झुक जाएगा कि मेरा बेटा भाग रहा था जंग से और पीछे से गोली पड़ गई, मैं तो कहती हूँ सीने पर गोली आए। तो याद रखिएगा, इस्लाम में शहादत की बहुत सारी कहानी है। तरतीब से हम देख रहे थे तो यासिर, बीबी सुमैया, फिर उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक, और उसके बाद हज़रत उस्मान गनी। ये बड़े बड़े शोहदा गुज़र गए। आप कह लीजिए कि इनकी कहानियाँ पढ़ें तो आपको ऐसे लगेगा कि आंखों में से खून निकलता है। और इसके बाद फिर कहीं जाकर शोहदाए, जिसको आप हज़रत हसन और हुसैन की बात करते हैं, उनसे पहले भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु भी शहीद कर दिए गए थे।